मेरे आत्मीय युवा मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 14 मई 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने एक नौजवान साथी का संजीव पाल का जो हरदोई उत्तर प्रदेश से हैं, जिन्होंने एकेडमी की 28 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं तरलता, जिसे आप लिक्विडिटी कहते हैं, इसके बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले एक दो जो छोटी छोटी घटनाएं हैं उन्हें हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन था उसके बारे में कैलकुलेशन आया है कि वे 31 मिनट तक का उनका संबोधन था और उस 31 मिनट में हर 71 सेकंड के बाद उन्होंने आत्मनिर्भर शब्द का प्रयोग किया। तो आप यूं कह लीजिए कि टोटल मिलाकर के लगभग 31 मिनट में, मोटे तौर पर चलिए हम कह लेते हैं कि 22 23 24 बार उन्होंने आत्मनिर्भरता की बात कही, यानी कि हमें आत्मनिर्भर होना है। इससे ये पता लगता है कि अभी जो हमारी सरकार है अब उसके दिमाग में आत्मनिर्भरता की जो बात है वो कितनी गहरे रूप में बैठी हुई है, ठीक है। और इसी का पालन करते हुए जो हमारा गृह मंत्रालय है उसने एक आदेश जारी किया है, देखिए शुरुआत हो गई है। आदेश जारी किया है कि उसकी जो हमारी केंद्रीय सशक्त बल है उनकी जो कैंटीन होती है उन कैंटीन में जो सामान बिकता है वो सब का सब अब स्वदेशी सामान ही होगा। मेरी समझ से आर्मी के जो कैंटीन, जो सशस्त्र बल की कैंटीन होती हैं, शायद आपको मालूम होगा, है ना, वहाँ जो सशस्त्र बल के जो अधिकारी सैनिक होते हैं वही वहाँ जाकर के सामान खरीद सकते हैं और वो सामान बहुत सस्ता होता है। ये सेना के लिए अलग से ही उसमें प्रावधान होता है क्योंकि उस पर टैक्स वगैरह की छूट रहती है। तो वहाँ अभी आप चले जाइए तो हर तरह का सामान मिलता है, विदेशी सामान भी मिलता है। तो अब ये आदेश पारित कर दिया गया है कि 1 जून से वहां केवल स्वदेशी सामान ही बिकेगा। तो इस तरह से आप देखिए कि जो आत्मनिर्भरता की जो दिशा है या उस पर जो एक्शन होना है उसकी शुरुआत हो गई है। इस बीच मैं देख रहा हूं कि व्हाट्सएप से भी बहुत ज्यादा इस तरह के मैसेज आने लगे हैं कि आप स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग कीजिए। और मेरे पास एक तो बहुत बड़ी लिस्ट आई है, शायद उसमें 150 वस्तुओं की लिस्ट है जिसमें एक तरफ विदेशी सामान दिखाया हुआ है और उसी के बिल्कुल पैरेलल स्वदेशी सामान दिखाया हुआ है कि अच्छा ये टूथपेस्ट है तो ये टूथपेस्ट विदेशी है और इसके बदले में ये टूथपेस्ट स्वदेशी है। तो एक तरीके से आप यूं कह लीजिए कि इसकी शुरुआत हो चुकी है, देखते हैं कि कहां तक ये बात आगे बढ़ पाती है। लेकिन दोस्तों, इसका एक थोड़ा सा नकारात्मक पक्ष भी है, चूंकि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो उस तरफ भी आपका ध्यान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमने आत्मनिर्भरता के तहत स्वदेशी को बहुत ज्यादा बढ़ावा देना शुरू किया, इसका अंतिम परिणाम यही होगा कि हम विदेशी सामान का बायकॉट करेंगे, ठीक है। अब हमारे सामने संकट ये पैदा होगा कि हम जो विदेशी निवेश आकर्षित करना चाहते हैं हमारे, या जो मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम है कि आप भारत में आइए और बनाइए, तो अगर हम स्वदेशी पर इतना जोर देंगे तो फिर ये जो विदेशी जो उद्योगपति हैं वो भारत में क्या आकर वस्तुओं का निर्माण करना चाहेंगे? क्या उनके दिमाग में यह आशंका पैदा नहीं होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी चीजों का आगे चल करके बायकॉट किया जाने लगे, है ना। हमें चीजों को एक तार्किक तरीके से सोचना पड़ेगा। दूसरा ये भी एप्रिहेंशन हो सकता है कि अगर हम बहुत ज्यादा स्वदेशी को संरक्षण देंगे तो हमारी जो स्वदेशी कंपनियां हैं उनमें जो प्रतियोगिता की जो भावना होनी चाहिए वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि वो अपने को प्रोटेक्टेड महसूस करेंगे कि भैया हमारा सामान तो बिक ही रहा है। और फिर हो सकता है कि वो R&D, जिसे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहते हैं, उस पर काम करना बंद कर दें। आप यूं कह लीजिए कि आजादी के बाद जो हमारी आर्थिक नीति थी वो लगभग इसी तरह की ही नीति थी। और आपको मालूम है कि स्वदेशी आंदोलन गांधी जी के समय में कितने तेजी से आगे बढ़ा था और उस समय उसका एक पर्पस था और उसका बहुत लाभ भी हुआ। तो दोस्तों, अब जो आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, मेरा आपको सजेशन है कि आप इनके दोनों पक्षों को लेकर चलिएगा। क्या इससे हमें फायदा हो सकता है और क्या इसकी हमें कीमत भी चुकानी पड़ सकती है? क्या सच में हम वैश्विक जो बाजार है उससे बिल्कुल अलग हो सकते हैं? क्योंकि अगर हम इस तरह के कदम उठाएंगे तो डेफिनेटली जो दूसरे देश हैं वो भी हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे ही, वो चुप नहीं बैठेंगे, है ना। तो बहुत तार्किक रूप से आपको इस विषय को हैंडल करना है। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर और वह है लिक्विडिटी। लेकिन लिक्विडिटी से पहले मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आपसे बताना चाहूँगा और वह है अभी जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की परिभाषा में परिवर्तन किया गया है। लेकिन इससे पहले कि इसके इस पर मैं थोड़े से प्रकाश डालूं, मैं जरा हमारे जो ऑनलाइन के जो पेड स्टूडेंट हैं उनसे एक प्रश्न करना चाहूँगा। दोस्तों, मेरा प्रश्न ये है कि आपको ध्यान होगा कि लगभग एक सप्ताह या यूँ कह लीजिए कि 10 दिन पहले मैंने आप सबको कहा था, यूँ कह लीजिए अनुरोध किया था, या अगर आप मुझे अपना टीचर मानते हैं तो यूँ कह लीजिए कि मैंने निर्देश दिया था कि आप सबको जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग पर जो लेक्चर प्रोवाइड किया गया है, प्लीज़ आप उसे बहुत अच्छे तरीके से सुन लें। याद रखिए, मैं अक्सर इस शब्द का प्रयोग करता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से सुन लें। केवल सुनने से बात नहीं बनेगी, अच्छे तरीके से सुने, सुनने के बाद उस पर थोड़ा सा विचार करें, उसे मन ही मन दोहराएं, ताकि जो बातें वहां बताई गई हैं वो आपकी समझ में आ जाएं। और मुझे विश्वास है कि आप में से बहुत स्टूडेंट ने ऐसा किया भी होगा। दोस्तों, जिन्होंने ऐसा किया है उनसे अब मेरा एक प्रश्न है, और मैं आप सबसे इस प्रश्न के उत्तर भी चाहूंगा कि कल सरकार ने देखिए कि हमारे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए इतनी सारी घोषणाएं की हैं, बहुत घोषणाएं की हैं, मैं उन घोषणाओं पर नहीं जा रहा हूं, है ना? इतनी घोषणाएं की हैं कि ऐसे उनको टैक्स इस तरह की छूट दी जाएगी, उनको ऐसा लोन दिया जाएगा, सरकार उनसे खरीदी करेगी, उनकी डेफिनेशन को बदल दिया गया है, इस तरह की ढेर सारे कदम सरकार ने उठाए हैं। मेरा अब प्रश्न यह है कि सरकार ने कल जो भी कदम उठाए हैं खासकर इस सेक्टर के लिए जिसे हम MSME सेक्टर कहते हैं, तो क्या सरकार के उठाए गए कदम आपको व्याख्यात्मक स्तर पर समझ में आए? मैं व्याख्यात्मक स्तर की बात कर रहा हूं। भाषा के स्तर पर तो समझ में आ गए हैं, आप उन्हें रट भी लेंगे, बकायदे लिख भी लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। मैं कह रहा हूं एक्सप्लेनेटरी स्टेज तक जाने की बात कर रहा हूं मैं, कि क्या आप उनकी व्याख्या कर सकते हैं कि सरकार ने मान लीजिए कि लोन की यह बात कही है, या चलिए उनकी परिभाषा बदल दी है, तो उस परिभाषा के बदलने से क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या आप इस तरह की व्याख्याएं कर सकेंगे? सरकार ने जितनी भी कल घोषणाएं की हैं, इस पर आप सब विचार कीजिएगा, और विचार करने के बाद मुझे बताइएगा। मैं अपना प्रश्न दोहरा रहा हूं कि लेक्चर सुनने के बाद, उस टॉपिक पर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग से संबंधित लेक्चर सुनने के बाद, क्या सरकार की घोषणाओं को समझने में आपको मदद मिली है? और क्या आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि लेक्चर सुनने के कारण अभी जो घोषणाएं की गई हैं उनकी आप थोड़ी बहुत व्याख्या भी कर सकते हैं? दोस्तों, इस पर आप जरूर मुझे अवगत कराइएगा। आइए अब मैं थोड़ी सी दो महत्वपूर्ण बातें आपको बताना चाहूंगा। पहला यह है दोस्तों कि जो परिभाषा बदली गई है उस परिभाषा के महत्वपूर्ण पॉइंट्स को ध्यान से सुन लें और इसे आप नोट भी कर लें, और जो हमारी क्लासेस के स्टूडेंट हैं वो भी। पहली बात यह है कि पहले 2 सेक्टर में बांटा गया था सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उसकी डेफिनेशन अलग थी, और जो सर्विस सेक्टर था उसकी डेफिनेशन अलग थी। अब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है, दोनों की डेफिनेशन अब अलग अलग नहीं होगी, दोनों की डेफिनेशन एक कर दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अब आप देखिए कि पहले जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, अच्छा, दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात कही गई है वो ये है कि अब जो परिभाषा बनाई गई है उसके 2 मापदंड कर दिए गए हैं, निवेश यानी कि उसमें कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, और साथ ही साथ एनुअल टर्नओवर यानी कि उसकी जो वार्षिक जो टर्नओवर है वो कितनी है, राइट? तो अब आप इसको ध्यान से सुनिए कि जो सूक्ष्म उद्योग हैं, ठीक है, जो सूक्ष्म उद्योग हैं, जो मैक्रो इंडस्ट्री हैं, उसमें अब यह कर दिया गया है कि 1 करोड़ रुपए से अगर उसमें कम का इन्वेस्टमेंट है और उनका जो एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो वो सूक्ष्म माने जाएंगे। 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ से कम का टर्नओवर। अब हम आते हैं लघु पर, पुराना मैं आपको नहीं बता रहा हूं, नहीं तो आंकड़े आपको उलझा देंगे। जो लघु उद्योगों के लिए कर किया गया है अब वो कर दिया गया है 10 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ से कम का टर्नओवर। ये आपको रट जाना चाहिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, 10 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ से कम का टर्नओवर। और जो मीडियम है दोस्तों उसमें है 20 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ से कम का टर्नओवर। अगर 20 करोड़ से अधिक का निवेश हुआ तो फिर वो इसमें से बाहर चले जाएंगे, वो फिर बड़े उद्योग में शामिल हो जाएंगे, और अगर उनका एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ से अधिक का हुआ तो फिर वो यहां से बाहर हो जाएंगे। तो ये दोस्तों डेफिनेशन है। इसी के साथ ही साथ जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है दोस्तों, वो महत्वपूर्ण घोषणा है कि सरकार ने ये कहा है कि अगर सरकारी तंत्र को 200 करोड़ रुपए तक की वस्तु खरीदनी है, 200 करोड़ रुपए तक का सामान खरीदना है, तो इसके लिए वो ग्लोबल टेंडर जारी नहीं करेगी, उसे अब इस एमएसएमई से ही खरीदना होगा। पहले ये जो सीमा थी वो 50 लाख रुपए से कम की थी कि अगर आपको 50 लाख रुपए से कम की खरीदी करनी है तो आप इन्हीं से खरीदी करेंगे। इसका हम लोगों को अनुभव है, जब मैं सर्विस में था तो जब भी हमको इस हम लोगों को ऑफिस के लिए कोई चीज की जरूरत पड़ती थी तो अगर उसकी एक लिमिट से कम की टोटल खर्च आना है उस पर, तो हमेशा इसी तरह के सहकारी जो संस्थान होते हैं या लघु उद्योग होते हैं इन्हीं से ही हम लोग खरीदते थे। हालांकि भले ही वहां चीजें थोड़ी सी महंगी मिलती थी, लेकिन ये था कि हम वहीं से खरीदेंगे, सरकार का ऑर्डर था ताकि इनको प्रोत्साहन मिल सके। क्योंकि देखिए, जो हमारी ये एमएसएमई के जो उद्योग हैं इनके सामने जो सबसे बड़ा संकट होता है वो मार्केटिंग का ही संकट होता है, तो सरकार इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए यह करती है। दोस्तों, यहां मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहूंगा और प्लीज इस रेफरेंस को नोट कर लें, वह जनरल फाइनेंशियल रूल्स। जनरल फाइनेंशियल रूल्स, ये जो जनरल फाइनेंशियल रूल्स हैं GFR कहते हैं, ये क्या है, 1963 में बने थे ये और कुछ भी नहीं है, सरकार के कुछ रूल्स और जो ऑर्डर्स समय समय पर निकलते रहते हैं उनका कंपाइलेशन है। लेकिन देखिए, फाइनेंशियल रूल्स, ये जो ऑर्डर्स हैं जो इस तरह के रूल्स बनते रहते हैं, ये फाइनेंस से संबंधित हैं, और ये जो पब्लिक फाइनेंस होता है, जो सार्वजनिक वित्त होता है, उनसे संबंधित होता है कि जो पब्लिक का पैसा है उस पब्लिक के पैसे का आप इस्तेमाल कैसे करेंगे। 1963 में ये बना था, बीच बीच में इसमें परिवर्तन किए गए हैं, और अब जब 200 करोड़ रुपए तक की सीमा निर्धारित कर दी गई है तो सीधी सी बात है कि अब ये जो जनरल फाइनेंशियल रूल्स है इसमें परिवर्तन किया जाएगा। यानी कि अगर किसी भी सरकारी तंत्र को 200 करोड़ रुपए से कम की वस्तुएं खरीदनी है और वो हमारे एमएसएमई में अवेलेबल है तो उन्हें यहीं से ये सामान खरीदना होगा ताकि इन्हें प्रोत्साहन मिल सके। दोस्तों, आज मुझे फिर से आपसे माफ़ी मांगनी पड़ रही है और मैं फिर से माफ़ी मांग रहा हूं, इसके लिए मैं फिर से माफ़ी मांग रहा हूं, यानी कि चूंकि दोबारा मैं ऐसा कर रहा हूं, इसी बात को बताने में चूंकि वक्त खत्म हो चला है, मैंने शुरू में आपसे तरलता के बारे में बताने की बात कही थी, लेकिन मित्रों तरलता के बारे में मैं डेफिनेटली कल बात करूंगा, क्योंकि उसका संबंध जो अखबारों में आज हमने पढ़ा है और न्यूज़ में जो सुना है उससे है, तो कल मैं पर बिल्कुल पक्के तौर पर लिक्विडिटी के बारे में आपसे बातें करूंगा। मुझे माफ़ करें कि मैं शुरू में किए गए अपने वायदे को नहीं निभा पा रहा हूं, तो आज के मुख्य विषय को आप सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग ही मानकर चलें। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स में आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, अभय शुक्ला, आयुष मिश्रा पिजटोरोई बिहार से, नितिन चौहान, प्रियंका रावत देहरादून उत्तराखंड से, अनामिका विमल, मनरूप, सुयश तिर्की, अंकित कुमार और अंशिता मेघराजानी भोपाल से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।